मनोहर। शहर में खरे दाम लगते हैं, यहाँ कौन जी में आया दिया ना दिया। कादिर। कल लश्कर का एक चपरासी विशेषर के यहाँ साबूदाना मांग रहा था। सुनता था, कहता था, जहाँ से चाहो मुझे ला कर दो। गालियाँ देता था, डंडा दिखाता था। बारे बलराज पहुँच गया। जब वह कड़ा पड़ा तो चपरासी मियाँ नरम पड़े और भुनभुनाते चल गए। दुखरंग। विशेषर की एक बार मरम्मत हो जाती तो अच्छा होता। गांव भर का गला मरोड़ता है, यह उसकी सजा है। लपट। और हम तुम किसका गला मरोड़ते हैं? मनोहर ने चिंतित भाव से कहा। बल्ला जब सरकारी आदमियों के मुंह आने लगा, कितना समझाया कि हार गया मानता नहीं। कादिर। यह उम्र ही ऐसी होती है। यह बातें हो रही थी कि एक बाटो ही आकर अलाव के पास खड़ा हो गया। उसके पीछे एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई और अलाव से दूर से झुकाकर बैठ गई। कादिर ने पूछा, कहो भाई कहाँ घर है? घर तो है देवरी पार। अपनी बुढ़िया माता को लिए अस्पताल जाता था, मगर वह जो सड़क के किनारे बगीचे में डिप्टी साहब का लश्कर उतारा है, वहाँ पहुँचा तो चपरासियों ने गाड़ी रोक ली और हमारे कपड़े लत्ते फेंक फाँक कर लकड़ी लादने लगे। कितनी अरज विनती की, बुढ़िया बीमार है, भर रात का चला हूँ, आज अस्पताल नहीं पहुँचा तो कल न जाने इसका क्या हाल हो, मगर कौन सुनता। मैं रोता ही रहा, वहाँ गाड़ी लद गई। तब मुझे कहने लगे, गाड़ी हाँक, क्या करूँ? अब गाड़ी हाँक कर सदर जा रहा, बैल और गाड़ी उनके भरोसे छोड़कर आया हूँ। जब लकड़ी पहुँचा के लौटूंगा तब अस्पताल जाऊँगा। तुम लोगों से हो सके तो बुढ़िया के लिए एक खटिया दे दो और कहीं पर पड़े रहने का ठिकाना बता दो। इनका पूर्ण करो, मैं विपत्ति में हूँ। दुखरंग। यह बड़ा अंधेर है, यह लोग आदमी काहे के पूरे राक्षस हैं जिन्हें धर्म दया का विचार नहीं। डपट। दिन भर के थके मादे बैल हैं, न जाने कहाँ गाड़ी ले जानी पड़ेगी और न जाने कब लौटोगे। अब तक बुढ़िया अकेली पड़ी रहेगी, यानी कैसी पड़े कैसी न पड़े, हम लोग कितने भी हों हैं तो पराए ही, घर के आदमी की और बात है। मनोहर। मेरा तो ऐसा ही जी चाहता है कि इस दमडिप्टी साहब के सामने चला जाऊँ और ऐसी खरी खरी सुनाऊँ कि वह भी याद करें। बड़े हाकिम की पूँछ बने हैं, इंसाफ तो क्या करेंगे, उल्टे गरीबों को पीसते हैं। खटिया की तो कोई बात नहीं है, उन्हें जगह कमी है, लेकिन यह अकेली रहेगी कैसे? बटोही। कैसे बताऊँ, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मनोहर। यहाँ से कोई तुम्हारी गाड़ी हाँक ले जाए तो कोई हर्ज है? बटोही। ऐसा हो जाए तो क्या पूछना है, कोई आदमी? मनोहर। बहुत आदमी है, कोई ना कोई चला जाएगा। कादिर। तुम्हारा हलवाहा तो खाली है, उसे भेज दो। मनोहर। हलवाए से बैल सधे न सधे, मैं ही चला जाऊँगा। कादिर। तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं आता, कहीं झगड़ा कर बैठो तो और बन जाए। दुखरन। भगत तुम चले जाओ तो अच्छा हो। दुखरन ने नाक सिकोड़ कर कहा, मुझे तो जानते हो रात को कहीं नहीं जाता, भजन भाव की यही बेला है। कादिर। चला तो मैं जाता, लेकिन मेरा मन कहता है कि बूढ़ी को अच्छा करने का जस मुझी को मिलेगा, कौन जाने अल्लाह को यही मंजूर हो। मैं उन्हें अपने घर ले जाता हूँ, जो कुछ बन पड़ेगा करूँगा। गाड़ी हसनों से हंकवाए देता हूँ, बैलों को चारा पानी देना है, बल्लाज की थोड़ी देर के लिए भेज देना। कादिर के बरौठे में वृद्धा की चारपाई पड़ गई। कादिर का लड़का हसनू गाड़ी हाँकने के लिए पड़ाव की तरफ चला। इतने में सुक्कू चौधरी और गौस खां दो सिपाहियों के साथ आते दिखाई दिए। दूसरी ओर से बल्लाज भी आकर खड़ा हो गया। गौस खां ने कहा, सब लोग यहाँ बैठे गलचौड़ कर रहे हो, कुछ लश्कर की भी खबर है? देखो यह चपरासी लोग दूध के लिए आए हैं, उसका बंदोबस्त करो। कादिर। कितना दूध चाहिए? एक चपरासी, कम से कम 10 शेर। कादिर। 10 शेर? इतना दूध तो चाहे गांव भर में ना निकले, दो ही चार आदमियों के पास तो भैंसे हैं, वह भी दूधार नहीं। मेरे यहाँ तो 2 जून में शेर भर से ज़्यादा नहीं होता। चपरासी। भैंसे हमारे सामने लाओ, दूध तो हमारा चपरास निकालता है, हम पत्थर से दूध निकाल लें, चोरों के पेट तक की बात निकाल लेते हैं, भैंसों से फिर भैंसे हैं। इस पर चपरास में वह जादू है, चाहे तो जंगल में मंगल कर दे। लाओ भैंसे यहाँ खड़ी करो। गौस खां। इतने तूल कलाम की क्या ज़रूरत है, दूध का इंतजाम हो जाएगा। 2 शेर सुक्कू देने को कहते हैं, कादिर के यहाँ भी 2 शेर मिल ही जाएगा। दुखरन भगत से 2 शेर दे देंगे, मनोहर और सिंह भी डपट 2-2 शेर देंगे, बस हो गया। कादिर। मैं 2-4 शेर का बीमा नहीं लेता, यह दोनों भैंसे खड़ी हैं, जितना दूध दे लें उतना ले लिया जाए। दुखरन। मेरी तो दोनों भैंसे गाभिन हैं, बहुत देंगे तो 8 शेर, पुआल तो खाने को पाती हैं, वह भी आधा पेट, अभी चराई है नहीं, दूध कहाँ से हो। डपट सिंह। सुक्कू चौधरी जितना देते हैं उसका आधा मुझसे ले लीजिए, हैसियत के हिसाब से न लीजिएगा। गौस खां। तो लोगों की यही नियत बेहूदी आदत है, हर जगह से लाग लपाट करने लगते हो। शराफत और नरमी से आधा भी न दोगे, लेकिन सख्ती से पूरा लिए हाजिर हो जाओगे। मैं तुमसे दो सर कह दिया, इतना तुम्हें दे देना होगा। डपट, इस तरह आप मालिक हैं, भैंसे खोल ले जाइए, लेकिन दो सिर दूध मेरे यहाँ न होगा। गौस खां, मनोहर तुम्हारे भैंसे तो दुधार हैं। मनोहर ने अभी जवाब न दिया था कि बल्लाज बोल उठा, मेरी भैंसे बहुत दुधार हैं, मन भर देती हैं, लेकिन बिगाड़ के नाम से चटाक भर भी न देंगी। मनोहर, तू चुप क्यों नहीं कर रहा था, तुझसे कौन पूछता है, हमसे जितना हो सकेगा तुमसे मतलब। चपरासी ने बल्लाज के अपमानजनक क्रोध से भर कर देखा, कहा, महतो अभी हम लोगों के पंजे में नहीं पड़े हो, बार बार पड़ जाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, मुँह से बात न निकलेगी। दूसरा चपरासी, मालूम होता है सिर पर गर्मी चढ़ गई है, तभी इतना ऐंठ रहा है, इसको लश्कर ले चलो तो गर्मी उतर जाए। बल्लाज ने मरमाहत होकर कहा, मियाँ हमारी गर्मी पाँच पाँच रुपल्ले के चपरासियों के मान की नहीं है, जाओ अपने साहब बहादुर के जूते सीधे करो, तो तुम्हारा काम है हमारी गर्मी के फेर में न पड़ो, नहीं तो हाथ न लग जाएंगे। इस जन्म के पापों का दंड भोग रहे हो, लेकिन अब भी तुम्हारी आँख नहीं खुजली। बल्लाज ने यह शब्द ऐसी सगर्व गंभीरता से कहे कि दोनों चपरासी खिसिया से गए। इस घोर अपमान का प्रतिकार करना कठिन था, यह मानो बात को वाणी की परिधि से निकाल कर कर्म के क्षेत्र में लाने की ललकार थी। व्यंगाघात शाब्दिक कलह की चरम सीमा है, उसका प्रतिकार मुंह से नहीं हाथों से होता है, लेकिन बल्लाज की चौड़ी छाती और पुष्ट भुजदंड देखकर चपरासियों को हाथापाई करने का साहस न हो सका। गौस खां से बोला, खां साहब आप इस लौंडे को देखते हैं कैसा बढ़ा जाता है, इसे समझा दीजिए हमारे मुंह न लगे, ऐसा न हो शामत आ जाए और छः महीने तक चक्की पीसनी पड़े। हम आप लोगों का मुलाहिजा करते हैं, नहीं तो इस हेंकड़ी का मजा चखा देते। गौस खां, सुनते हो मनोहर अपने बेटे की बातें, भला सोचो तो डिप्टी साहब के कानों में यह बात पड़ जाए तो तुम्हारा क्या हाल हो, कहीं एक पत्ती का साया भी न मिलेगा। मनोहर ने दीनता से खां साहब की ओर देख कर कहा, मैं तो इसे सब तरह से समझा बुझा कर हार गया, न जाने क्या हाल करने पर तुला है। अरे तू यहाँ से जाएगा कि नहीं? बलराज, क्यों जाऊँ, मुझे किसी का डर नहीं है, ये लोग डिप्टी साहब से मेरी शिकायत करने की धमकी देते हैं, मैं आप ही उनके पास जाता हूँ। इन लोगों को उन्होंने कभी ऐसा नादिरशाही हुक्म न दिया होगा कि जाकर गांव में आग लगा दो, और मान लो कि वह ऐसा कड़ा हुक्म दे भी दें तो इन लोगों को तो सोचना चाहिए कि गरीब किसान हमारे बड़े भाई बंद हैं, इन्हें व्यर्थ न सताएं। लेकिन इन लोगों को तो पैसे के लोभ और चपरास के मद ने ऐसा अंधा बना दिया कि कुछ सूझता ही नहीं। आज इस बेचारी बुढ़िया का क्या हाल होगा, मरेगी कि जिएगी? नौकरी की तो है 5 रुपए की, काम है बस्ते ढोना, मेज साफ करना, साहब के पीछे पीछे खिदमतगारों की तरह चलना और बनते हैं रईस। मनोहर, तो चुप रहेगा कि नहीं? एक चपरासी, नहीं इसे खूब गालियां दे लेने दो जिससे इसके दिल की हवस निकल जाए, इसका मजा कल मिलेगा। खां साहब आपने सुना है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, आपका इतना मुलाहिजा बहुत किया, लाइए दूध का कुछ इंतजाम करते हैं कि हम लोग जाएं। गौस का, नहीं जी दूध लो और 10 शेर से भी शेर भर ज़्यादा, यही लोग झक मार कर और देंगे। क्या बताएं, आज इस छोकरी की बदौलत हमको तुम लोगों के सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा, इस गांव की कुछ हवा ही बिगड़ी हुई है, मैं खूब समझता हूँ, यह लोग जो भीगी बिल्ली बने बैठे हुए हैं इन्हीं की सह देने से लौंडे की इतनी ज़रूरत हुई है, नहीं तो इसकी मजाल थी कि ये टर्राता बछड़ा फूटे में ही बल कूदता है। खैर अगर मेरा नाम गौस का है तो एक एक से समझूंगा। इस तिरस्कार का आशाशीत प्रभाव हुआ, सब दहल उठे, वह अभिनयशीलता जो पहले सबके चेहरे पर झलक रही थी लुप्त हो गई, मनोहर तो ऐसा से पिटा गया मानो सैकड़ों जूते पड़े हो। सब खटाई ने सबके नशे उतार दिए। कादिर खां बोले, मनोहर जाओ जितना दूध हो सब भेज दो। गौस खां, हमको मनोहर के दूध की जरूरत नहीं है। बल्लाज, यहाँ देता ही कौन है? मनोहर खिसी आ गया, उठ खड़ा हुआ बोला, अच्छा ये अब तू ही बोल जो तेरे जी में आए कर, मैं जाता हूँ, अपना घर द्वार संभाल, मेरा रिवाह तेरे साथ न होगा, चाहे घर को रख चाहे आग लगा दे। यह कहकर वह सशंक क्रोध से भरा हुआ वहाँ से चल दिया। बल्लाज भी धीरे धीरे अपने अखाड़े की ओर चला। वहाँ भी समस्या नाटा था, मुखदर की जोड़ी रखी हुई थी, एक पत्थर की नाल जमीन पर पड़ी हुई थी और लेजिम आम की डाल से लटक रहा था। बल्लाज ने कपड़े उतारे और लंगोट कसकर अखाड़े में उतरा, लेकिन आज व्यायाम में उसका मन न लगा। चपरासियों की बात एक फोड़े की भांति उसके हृदय में टीस रही थी। यद्यपि उसने चपरासियों को निर्भय होकर उत्तर दिया था, लेकिन उसे इससे तनिक भी संदेह न था कि गांव के अन्य पुरुषों को, यहाँ तक कि पिता को भी मेरी बातें उद्दंड प्रतीत हुई हैं। सबके सब कैसा सन्नाटा खींचे बैठे रहे, मालूम होता था किसी के मुँह में जीभ भी नहीं है, जब भी तो यह दुर्गति हो रही है, अगर कुछ दम होता तो आज इतने पीछे कुचले क्यों जाते। और तो और दादा ने भी मुझे डांटा, न जाने इनके मन में इतना डर क्यों समा गया है। पहले तो ये इतने कायर न थे, कदाचित अब मेरी चिंता इन्हें सताने लगी है। लेकिन मुझे अवसर मिला तो स्पष्ट कह दूंगा कि तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। मुझे परमात्मा ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत कर सकता हूँ, दुख खिलाकर खा सकता हूँ। तुम्हें अगर अपने खेत इतने प्यारे हैं कि उनके पीछे तुम अत्याचार और अपमान सहने को तैयार हो तो शौक से सहो, लेकिन मैं ऐसे खेतों पर लात मारता हूँ। अपने पसीने की रोटी खाऊंगा और अकड़ कर चलूंगा। अगर कोई आँख दिखाएगा तो उसकी आँख निकाल लूंगा। जब बुड्ढा गौस खां लाल पीली आँख कर रहा था, मालूम होता है इनकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी हुई है। मुझ पर दो चोटें कर चुके हैं, अब देखता हूँ कौन हाथ निकालते हैं। इनका क्रोध मुझे पर उतरेगा, कोई चिंता नहीं, देखा जाएगा। दोनों चपरासी मन में फूले न समाए होंगे कि सारा गांव कैसा रोब में आ गया, पानी भरने को तैयार है। गांव वालों ने लल्लो चप्पू की होगी, कोई परवाह नहीं, चपरासी मेरा कर ही क्या सकते हैं। लेकिन मुझे कल प्रातःकाल डॉक्टर साहब के पास जाकर उनसे सब हाल कह देना चाहिए। विद्वान पुरुष हैं, दिन जनों पर उन्हें अवश्य दया आएगी। अगर वह गाड़ियों को पकड़ने की मनाही कर दें तो क्या पूछना, उन्हें यह अत्याचार कभी पसंद ना आता होगा। यह चपरासी लोग उनसे छिप कर यूँ जबरदस्ती करते हैं। लेकिन कहीं उन्होंने मुझे अपने इजलास के खड़े खड़े निकलवा दिया तो, बड़े आदमियों को घमंड बहुत होता है। कोई हर्ज नहीं, मैं सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा कि कैसे कोई मुसाफिर की गाड़ी पकड़ता है। यह तो दो चार का सिर तोड़ के रख दूंगा या फिर आप ही वहीं मर जाऊंगा। अब बिना गर्म पड़े काम नहीं चल सकता, वह दादा बुलाने आ रहे हैं। बल्लाज अपने बाप के पीछे पीछे घर पहुंचा, रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। विलासी बल्लाज को देखकर बोली, कहाँ जाके बैठे रहे, तुम्हारे दादा कब से खोज रहे थे, चलो रोटी तैयार है। बल्लाज अखाड़े की ओर चला गया था। विलासी, तुम अखाड़े मत जाया करो। बल्लाज, क्यों? विलासी, क्यों क्या, देखते नहीं हो सबकी आंखों में कैसे चुपते हो? जिन्हें तुम अपना हित समझते हो वो सब के सब तुम्हारी जान के घातक हैं। तुम्हें आग में ढकेल कर आप तमाशा देखेंगे। आज ही तुम्हारे सरकारी आदमियों से भिड़ा कर कैसा दबक गए। बल्लाज ने उपदेश का कुछ उत्तर न दिया, चौके पर जाकर बैठ गया। उसके एक ओर मनोहर था, दूसरी ओर जरा हटकर उसका हलवाहा रंगी चमार बैठा हुआ था। विलासी ने जौ की मोटी मोटी रोटियां, बथुआ साग और अरहर की दाल तीनों थालियों में परस दी। तब एक फूल के कटोरे में दूध लाकर बल्लाज के सामने रख दिया। बल्लाज, क्या और दूध नहीं है? विलासी, दूध कहाँ है, बेगार में नहीं चला गया? बल्लाज, अच्छा, यह कटोरा रंगी के सामने रख दो। विलासी, तुम खा लो रंगी का, एक दिन दूध ना खाएगा तो दुबला न हो जाएगा। बल्लाज बेगार का हाल सुनकर क्रोध से आग हो रहा था, कटोरे को उठाकर आंगन की ओर जोर से फेंक दिया और तुलसी के चबूतरे से टकरा कर टूट गया। विलासी ने दौड़ कर कटोरा उठा लिया और पछताते हुए बोली, तुम्हें क्या हो गया है? राम राम, ऐसा सुंदर कटोरा चूर कर दिया, कहीं सनक तो नहीं गए हो? बल्लाज, हाँ सनक ही गया। विलासी, यह किस बात पर कटोरे को पटक दिया? बल्लाज, इसीलिए कि जो हमसे अधिक काम करता है उसे हमसे अधिक खाना चाहिए। हमने तुमसे बार बार कह दिया है कि रसोई में जो कुछ थोड़ा बहुत हो वह सबके सामने आना चाहिए। अच्छा खाएं तो सब खाएं, बुरा खाएं तो सब खाएं, लेकिन तुम्हें न जाने क्यों यह बात भूल जाती है। अब याद रहेगी, रंगी कोई बेगार का आदमी नहीं है, घर का आदमी है। वो मुँह से चाहे न कहे पर मन में अवश्य कहता होगा कि छाती फाड़ कर काम मैं करूँ और मूछों पर ताव देकर खाएं यह लोग, ऐसा दूध की खाने पर लानत है। रंगी ने कहा, भैया नित्य दूध खाता हूँ, एक दिन न सही तुम हक नाहक इतने खपा हो गए। इसके बाद तीनों आदमी चुप खाने लगे। खा पी के बल्लाज और रंगी ऊँख की रखवाली करने मड़ैया की तरफ चले। वहाँ बल्लाज ने चरस निकाली और दोनों ने खूब दम लगाए। जब दोनों ऊँख के छिलके की बिछावन पर कंबल उड़ कर लेटे तो रंगी बोला, कहें भैया, आज तुमने लश्कर के चपरासी से कुछ कहा सुनी हो गई थी क्या? बल्लाज, हाँ हुज्जत हो गई, दादा ने मरे न किया होता तो दोनों को मारता। रंगी, तभी तो दोनों बहुत बुरा भला कहते चले जाते थे। मैं उधर से क्यारी में पानी खोल कर आता था, मुझे देखकर दोनों चुप हो गए। मैंने इतना सुना, अगर यह लौंडा कल सड़क पर गाड़ियाँ पकड़ने में कुछ तकरार करे तो बस चोरी का इल्जाम लगा कर गिरफ्तार कर लो, एक 50 बेत पड़ जाए तो उसकी शेखी उतर जाए। बल्लाज, अच्छा यह सब यहाँ पर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तुमने अच्छा किया कि चेता दिया, मैं कल सवेरे डिप्टी साहब के पास जाऊँगा। रंगी, क्या करने जाओगे भैया, सुनते हैं अच्छा आदमी नहीं है, बड़ी कड़ी सजा देता है, किसी को छोड़ता तो जानता ही नहीं, तुम्हें क्या करना है, जिसकी गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी वह आप निपट लेगा। बल्लाज, वाह, लोगों में इतना ही बूता होता तो किसी की गाड़ी पकड़ी ही क्यों जाती, सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है, ये चपरासी भी तो आदमी ही है। रंगी, तो तुम काहे को दूसरे के बीच में पड़ते हो, तुम्हारे दादा आज बहुत उदास थे और अम्मा रोती थी। बल्लाज, क्या जाने क्यों रंगी, जब से दुनिया का थोड़ा बहुत हाल जानने लगा मुझे अन्याय नहीं देखा जाता। जब किसी जबरे को किसी गरीब का गला दबाते देखता हूँ तो मेरे बदन में आग सी लग जाती है। यही जी चाहता है कि चाहे अपनी जान रहे या जाए इस जबरे का सिर नीचा कर दूँ। सिर पर भूत सा सवार हो जाता है। जानता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर मन काबू से बाहर हो जाता है। इसी तरह की बातें करते दोनों सो गए। प्रातःकाल प्रहलाद घर गया, कसरत की दूध पिया और अपना ढीला कुर्ता पहना, पगड़ी बांध डिप्टी साहब के पड़ाव की ओर चला गया। मनोहर अब तक उसे रूठे बैठे थे, अब जब्त न कर सके। पूछा, कहाँ जाते हो? प्रहलाद, जाता हूँ डिप्टी साहब के पास। मनोहर, क्यों सिर पर भूत सवार है? अपना काम क्यों नहीं देखते? प्रहलाद, देखूंगा कि पढ़े लिखे लोगों का मिजाज कैसा होता है। मनोहर, धक्के खाओगे और कुछ नहीं। प्रहलाद, धक्के तो चपरासियों के खाते हैं, इसकी क्या चिंता, कुत्ते की जात तो पहचानी जाएगी। मनोहर ने उसकी ओर निराशापूर्ण स्नेह की दृष्टि से देखा और कंधे पर कुदाल रखकर हार की ओर चल दिया। प्रहलाद को मालूम हो गया कि अब यह मुझे छोड़ा हुआ सांड समझ रहे हैं, पर वह अपनी धुन में मस्त था। मनोहर का यह विचार कि इस समय समझाने का उतना असर न होगा जितना विरक्त भाव का, निष्फल हो गया। और जो ही घर से बाहर निकले, प्रहलाद ने भी लट कंधे पर रखा और कैंप की ओर चला। किसी हाकिम के सम्मुख जाने का उसका यह पहला ही असर था। मन में अनेक विचार आते थे, मालूम नहीं मिले या न मिले, कहीं मेरी बात सुनकर बिगड़ न जाए, मुझे देखते ही सामने से निकलवा न दें। चपरासियों ने मेरी शिकायत अवश्य की होगी, क्रोध में भरे बैठे होंगे। बाबू ज्ञान शंकर से इनकी दोस्ती भी तो है, उन्होंने भी हम लोगों की ओर से उनके कारण खूब भरे होंगे, मेरे सूर्य देखते ही जल जाएंगे। जो कुछ हो, एक नया अनुभव तो हो जाएगा। यही पढ़े लिखे लोग तो हैं जो सभाओं और लाट साहब के दरबार में हम लोगों की भलाई की रट लगाया करते हैं, हमारे नेता बनते हैं। देखूंगा कि यह लोग अपनी बातों के कितने धनी हैं। प्रहलाद कैंप में पहुंचा तो देखा जगह जगह लकड़ी के अलाव जल रहे हैं, कहीं पानी गर्म हो रहा है, कहीं चाय बन रही है। एक ओर बूचड़ बकरे का मांस काट रहा है, दूसरी ओर विशेषर साहब बैठे जींस तौल रहे हैं। चारों ओर घड़े और हांडियों टूटी पड़ी हैं। एक वृक्ष की छाँव में कितने आदमी सिकुड़े बैठे थे जिनके मुकदमे की आज पेशी होने वाली थी। प्रहलाद पेड़ों की आड़ में होता हुआ ज्वाला सिंह के खेमे के पास जा पहुंचा। उसे यह धड़का लगा हुआ था कहीं उन दोनों चपरासियों की निगाह मुझ पर न पड़ जाए। वह खड़ा सोचने लगा कि डिप्टी साहब के सामने कैसे जाऊं। उस पर इस समय एक रोब छाया हुआ था, खेमे के सामने जाते हुए पैर कांपते थे। अचानक उसे गौस गांव सुखी चौधरी एक पेड़ के नीचे आग तापते दिखाई पड़े। अब वह खेमे के पीछे खड़ा न रह सका। उसे सामने धक्का खाना, डांट सुनना मर जाने से भी बुरा था। वह जी कड़ा करके खेमे के सामने चला गया और ज्वाला सिंह के सलाम करके चुपचाप खड़ा हो गया। बाबा ज्वाला सिंह एक न्यायाधीश और दयालु मनुष्य थे, किंतु इन 2-3 महीनों के दौरान उन्हें अनुभव हो गया था कि बिना कड़ाई के मैं सफलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। सौजन्य और शालीनता निज के कामों में चाहे जितनी हो सराहनीय हो, लेकिन शासन कार्य में यह सद्गुण अवगुण बन जाते हैं। लोग उनसे अनुचित लाभ उठाने लगते हैं, उन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लेते हैं, अतएव न्याय और शील में परस्पर विरोध हो जाता है। रसद और बेगार के विषय में भी अधीनस्थ कर्मचारियों की चापलूसियाँ उनकी न्याय नीति पर विजय पा गई थी और वह अज्ञात भाव से स्वेच्छाचारी अधिकारियों के वर्तमान सांचे में ढल गए थे। उन्हें अपने विवेक पर पहले से गर्व था, अब उसने आत्मश्लाघा का रूप धारण कर लिया था। वह जो कुछ कहते या करते थे उसके विरुद्ध एक शब्द भी न सुनना चाहते थे, इससे उनकी राय पर कोई असर न पड़ता था। वह निष्प्रिय मनुष्य थे और न्याय मार्ग से जौ भर की भी न टलते थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह विचार होता था कि किसी को मुझसे कोई शिकायत न होनी चाहिए। अपने औचित्य पालन का विश्वास और अपनी गौरवशील प्रकृति उन्हें प्रार्थियों के प्रति अनुदार बना देती थी। प्रहलाद को सामने देखकर बोले, कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? प्रहलाद ने झुककर सलाम किया, उसकी उद्दंडता लुप्त हो गई थी। डरता हुआ बोला, हुजूर से कुछ बोलना चाहता हूँ, दावेदार का घर इसी लखनपुर में है। ज्वाला सिंह, क्या कहना है? प्रहलाद, कुछ नहीं, इतना ही पूछना है कि सरकार को आज कितनी गाड़ियों की जरूरत होगी। ज्वाला सिंह, क्या तुम गाड़ियों के चौधरी हो? प्रहलाद जी, नहीं। चपरासी लोग सड़क पर जाकर मुसाफिरों की गाड़ियाँ रोकते हैं और उन्हें दिक करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार को जितनी गाड़ियों की दरकार हो अपनी उतनी आसपास के गाँव से खोज लाऊँ। उनका सरकार से जो किराया मिलता हो वह दे दिया जाए तो मुसाफिरों को रुकना ना पड़े। ज्वाला सिंह ने अपना सामान लादने के लिए ऊँट रख लिए थे, किंतु यह जानते थे कि मातौरों और चपरासियों को अपना असबाब लादने के लिए गाड़ियों की जरूरत होती है, इन्हें उसका खर्च सरकार से नहीं मिलता। अतः वे लोग गाड़ियों न रोकें तो उनका काम ही न चले और व्यवहार चाहे प्रजा को कष्ट पहुँचाए पर क्षम्य है। उनके विचार में कोई ज्यादती न थी। संभव था कि यह प्रस्ताव किसी सम्मानित पुरुष ने किया होता तो वह इस पर विचार करते, लेकिन एक अक्खड़ गंवार मूर्ख देहाती को उनसे यह शिकायत करने का साहस हो वह उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाने का दावा करे। जब उनके आत्माभिमान की लसह था, चिढ़कर बोले, जाकर सरिश्तेदार से पूछो। प्रहलाद, हुजूर ही उन्हें बुलाकर पूछ लें, मुझे वह न बताएंगे। ज्वाला सिंह, मुझे इस सिर दर्द की फुर्सत नहीं है। प्रहलाद के तेवर पर बल पड़ गए। शिक्षित समुदाय की नीति परायण और सज्जनता पर उसके जो श्रद्धा थे वह क्षण भर में भंग हो गई। इन सद्भावों की जगह उसे अधिकार स्वेच्छाचार का अहंकार अकड़ता दिख पड़ा। अहंकार का सामने से झुकाना उसने न सीखा था। उसने निश्चय किया कि जो मनुष्य इतना अभिमानी हो मुझे इतना नहीं समझे वह आदर के योग्य नहीं। हिंसे और गौस खां या मामूली चपरासियों में अंतर ही क्या रहा, ज्ञान और विवेक की ज्योति कहाँ गई, निशंक बोला। सरकार इसे सिरदर्द समझते और हम लोगों की जान पर बनी हुई है। हुजूर यहाँ धर्म के आसन पर बैठे हैं और चपरासी लोग प्रजा को लूटते फिरते हैं। मुझे आपसे यह विनती करने का हौसला हुआ तो इसलिए कि मैं समझता था आप दीनों की रक्षा करेंगे। अब मालूम हो गया कि आप हम अभागों का सहायक परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। यह कहकर वह बिना सलाम किए वहाँ से चल दिया। उसे एक नशा सा हो गया था। बातें अवज्ञापूर्ण थी पर उनसे स्वाभिमान और सदिच्छा कूट कूट कर भरी हुई थी। ज्वाला सिंह में अभी तक सही देता का संपूर्णतः पतन न हुआ था। क्रोध की जगह उनके मन में सद्भावना का विकास हुआ। अब तक उनके यहाँ स्वार्थी और खुशामदी आमदियों का ही झमघट लगा रहता था। ऐसे एक भी स्पष्टवादी मनुष्य को से उनका संपर्क न हुआ था। जिस प्रकार मीठे पदार्थ खाने से ऊब कर हमारा मन कड़वी वस्तुओं की ओर लपकता है उसी भांति ज्वाला सिंह को ये कड़वी बातें फिर अप्रिय लगी। उन्होंने उनके हृदय नेत्रों के सामने से पदाभिमान का पर्दा हटा दिया। जी में त्वाया के युवक को बुलाकर उसे खूब बातें करूँ किंतु अपनी स्थिति का विचार करके रुक गए। वह बहुत देर तक बैठे हुए इन बातों पर विचार करते रहे। अंतिम शब्दों ने उनकी आत्मा को एक ठोका दिया था और वह जागृत हो गई थी। मन में अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेने के बाद उन्होंने अहलमद साहब को बुलाया। सैयद इजाद हुसैन ने बल्लाज को जाते देख लिया था। कल का सार वृत्तांत उन्हें मालूम ही था। ताड़ गए कि लौंडा डिप्टी साहब के पास फरियाद लेकर आया होगा। पहले तो शंका हुई कहीं डिप्टी साहब इसकी बात में नाच गए हों, लेकिन जब उसकी बातों से ज्ञात हुआ कि डिप्टी साहब ने उल्टे और फटकार सुनाई तो धैर्य हुआ। बल्लाज को डांटने लगे। वो अपने अफसरों के इशारे के गुलाम थे और उन्हीं की इच्छानुसार अपने कर्तव्य का निर्णय किया करते थे। बल्लाज इस समय ऐसा हताश हो रहा था कि पहले थोड़ी देर तक वह चुप रहा, खड़ा इजाद हुसैन की कठोर बातें सुनता रहा, अंत में गंभीर भाव से बोला, आप क्या चाहते हैं कि हम लोगों का पर अन्याय भी हो और हम फरियाद भी ना करें? इजाद हुसैन, फरियाद का मजा तो चख लिया, अब चालान होता है तो देखें कहाँ जाते हो। सरकारी आदमियों से मजाहिज होना कोई खालाजी का घर नहीं है। जट्टी साहब को तुम लोगों की सरकशी का रत्ती हाल मालूम है। बाबू ज्ञानशंकर ने सारा कच्चा चिट्ठा उनसे बयान कर दिया है। वह तो मौके की तलाश में थे। आज शाम तक सारा गांव बधा जाता है। गौस खां को सीधा पा लिया है, इसी से शेर हो गए हो, अब सारी कसर निकल जाती है। इतने पेत पड़ेंगे कि धज्जियाँ उड़ जाएंगी। बलराज, ऐसा कोई अंधेर है कि हाकिम लोग बेकसूर किसी को सजा दे दें? इजाद हुसैन, हाँ हाँ ऐसा ही अंधेर है। सरकारी आदमियों को हमेशा बेगार मिली है और हमेशा मिलेगी। तुम गाड़ियाँ न दोगे तो क्या वो अपने सिर पर असबाब ला देंगे? हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी तुम्ही से ले ली जाएगी, हंस कर दो या रो कर, समझ गए? इतने में एक चपरासी ने आकर कहा, चलिए आपको सरकार याद कर रहे हैं। इजाद हुसैन पान खाए बैठे तुरंत कुल्ली की पगड़ी बांधी और ज्वाला सिंह के सामने जाकर सलाम किया। ज्वाला सिंह ने कहा, मीर साहब चपरासियों को ताकीद कर दीजिए कि अब से कैंप के लिए बेगार में गाड़ियां न पकड़ा करें। आप लोग अपना सामान मेरे ऊँटों पर रख लीजिए। इससे आप लोगों को चाहे थोड़ी सी तकलीफ हो लेकिन यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि अपनी आसाइश के लिए दूसरों का जबर किया जाए। इजाद हुसैन, हुजूर बहुत बजा फरमाते हैं, आज से गाड़ियां पकड़ने को सख्त मुमानियत कर दी जाएगी, बेशक यह सरासर जुल्म है। ज्वाला सिंह, चपरासियों से कह दीजिए कि मेरे इजलास के खेमे में रात को सो रहा करें, बेगार में पुआल लेने की जरूरत नहीं। गरीब किसान ये पुआल काट काट कर जानवर खिलाते हैं, इसलिए उन्हें इसका देना नागवार गुजरता है। इजाद हुसैन, हुजूर का फरमान बजा है, हुक्काम को ऐसे ही गरीब परवर होना चाहिए। लोग जमींदारों की शक्तियों से यूं ही परेशान रहते हैं, इस पर हुक्काम की बिगाड़ तो और भी सितम हो जाती है। ज्वाला सिंह के हृदय में ज्ञान शंकर के ताने अभी तक खटक रहे थे। यदि थोड़े से कष्ट से उन पर छींटे पड़ने की सामग्री हाथ आ जाए तो क्या पूछना। ज्वाला सिंह इस देश के आवेग को न रोक सके, एक बार गांव में जाकर उनकी दशा देखने का निश्चय किया। 8 बज चुके थे किंतु अभी तक चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। लखनपुर के किसान आज छुट्टी सी मना रहे थे। जगह जगह अलाव के पास बैठे हुए लोग कल की घटना की आलोचना कर रहे थे। बल्लाज की धृष्टता पर टिप्पणियाँ हो रही थी। इतने में ज्वाला सिंह चपरासी और कर्मचारियों के साथ गांव में आ पहुंचे। गौस खां उनके दोनों चपरासी पीछे पीछे चले आते थे। उन्हें देखते ही स्त्रियाँ अपने अजमजे बर्तन छोड़ छोड़ कर घरों में घुसी। बालक वृंद भी इधर उधर दबक गए। कोई द्वार पर कूड़ा उठाने लगा, कोई रास्ते में पड़ी हुई खाट उठाने लगा। ज्वाला सिंह गाँव का भ्रमण करते हुए सुक्खू चौधरी के कुल्हाड़े में आकर खड़े हो गए। सुक्खू चारपाई लेने दौड़े। गौस खां ने एक आदमी को कुर्सी लाने के लिए चौपाल दौड़ाया। लोगों ने चारों ओर से आकर ज्वाला सिंह को घेर लिया। मंगल के भय से सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। ज्वाला सिंह, तुम्हारी खेती इस साल कैसी है? सुखी चौधरी के नेतृत्व का पद प्राप्त था। ऐसे अवसरों पर वही अग्रसर हुआ करते थे, पर वह अभी तक घर से ही चारपाई निकाल रहे थे, तो बृहदाकार होने के कारण द्वार से न निकल सकती थी। इसलिए कादिर खां को प्रतिनिधि का आसन ग्रहण करना पड़ा। उन्होंने विनीत भाव से उत्तर दिया, हुजूर अभी तक अच्छी है, आगे अल्लाह मालिक है। ज्वाला सिंह, यहाँ मुझे आप पारसी के कुएँ बहुत कम नज़र आते हैं, क्या जमींदार की तरफ से इसका कोई इंतजाम नहीं है? कादिर, हमारे जमींदार तो हुजूर हम लोगों की बड़ी परवस्ती करते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखें, हम लोग आप ही की आलस के मारे कोई फिक्र नहीं करते। ज्वाला सिंह, मुंशी गौस खां तो लोगों की सरकसी की बहुत शिकायत करते हैं, बाबू ज्ञान शंकर भी तो लोगों से खुश नहीं है, यह क्या बात है? तुम लोग वक्त पर लगान नहीं देते और जब तकाजा किया जाता है तो फिसाद पर आमादा हो जाते हो। तुम्हें मालूम है कि जमींदार चाहे तो तुमसे एक दो वसूल कर सकता है। कजादर अहिर ने दबी जबान से कहा, तो कौन कहे कि छोड़ देते हैं। ज्वाला सिंह, क्या कहते हो, सामने आकर कहो। कादिर, कुछ नहीं हुजूर, यही कहता है कि हमारी क्या मजाल है जो अपने मालिक के सामने सिर उठाएं, हम तो उनके ताबेदार हैं, उनका दिया खाते हैं, उनकी जमीन में बसते हैं, भला उनसे सरकशी करके मल्ला अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। रही बकाया तो हुजूर जहाँ तक होता है साल तमाम तक कौड़ी कौड़ी चुका देते हैं, हाँ जब कोई काबू नहीं चलता तो कभी थोड़ी बहुत बाकी रह भी जाती है। ज्वाला सिंह ने इसी प्रकार से और भी कई प्रश्न किए, किंतु उनका अभिष्ट पूरा न हो सका। किसी की जबान से गौस का या बाबू ज्ञान शंकर के विरुद्ध एक शब्द भी न निकला। अंत में हार मानकर वह पड़ाव को चल दिए। अपनी पारिवारिक सदिच्छा का ऐसा उत्तम प्रमाण देने के बाद ज्ञान शंकर को बंटवारे के विषय में अब कोई असुविधा न रही। लाला प्रभा शंकर ने उन्हें की इच्छानुसार करने का निश्चय कर लिया, दीवान खाना उनके लिए खाली कर दिया, लखनपुर मुसल्लम उनके हिस्से में दे दिया, घर की अन्य सामग्रियां भी उन्हीं की मर्जी के मुताबिक बांट दी। बड़ी बहू की ओर से विरोध की शंका थी, लेकिन इस एहसान ने उनकी जुबान बंद कर दी, वरन उनके मनोमालिन्य को भी मिटा दिया। प्रभा शंकर अब बड़ी बहू से, नौकरों से, मित्रों से, संबंधियों से ज्ञान शंकर की प्रशंसा किया करते और प्रायः अपनी आत्मीयता को किसी न किसी उपहार के स्वरूप में प्रकट करते। एक दुशाला, एक चांदी की थाल, कई सुंदर चित्र, एक बहुत अच्छा ऊनी कालीन और ऐसी विविध वस्तुएं उन्हें भेंट की। उन्हें स्वादिष्ट पदार्थों में बड़ी रुचि थी, नित्य नाना प्रकार के मुरब्बे, चटनियाँ, अचार बनाया करते थे, इस कला में प्रमिड़ थे। आप भी शौक से खाते थे और दूसरों को खिलाकर आनंदित होते थे। ज्ञान शंकर के लिए नित्य कोई न कोई स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर भेजते, यहाँ तक कि ज्ञान शंकर इस सद्भाव से तंग आ गए। उनकी आत्मा अभी तक उनकी कपट नीति पर उनको लज्जित किया करती थी। वह खातेदारियाँ उन्हें अपनी कुटिलता की याद दिलाती थी और इससे उनका चित्त दुखी होता था। अपने चाचा के सरल हृदयता और सज्जनता के सामने अपनी धूर्तता और मलिनता अत्यंत घृणित दिख पड़ती थी। लखनपुर ज्ञान शंकर की चिर अभिलाषाओं का स्वर्ग था। घर की सारी संपत्ति में ऐसा उपजाऊ, ऐसा समृद्धिपूर्ण और ऐसा कोई गांव नहीं था जो शहर से मिला हुआ हो। पक्की सड़क के किनारे और जलवायु भी उत्तम, यहाँ कई हलों की सीट थी, एक कच्चा सा सुंदर मकान भी था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ इजाफा लगाने की बड़ी गुंजाइश थी। थोड़े उद्योग से उसका नफा दूना हो सकता था, दो चार कच्चे कुएं खुदवा कर इजाफे की कानूनी शर्त पूरी की जा सकती थी। पटवारे को एक सप्ताह भी न हुआ था कि ज्ञान शंकर ने गौस खां को बुलवाया, जमाबंदी की जांच की, इजाफा वेद लखले की परत तैयार की और असामियों पर मुकदमा दायर करने का हुक्म दे दिया। अब तक सीर बिल्कुल न होती थी, इसका भी प्रबंध कर दिया। वह चाहते थे कि अपने हल बैल हलवाहे रखे जाएं और विधिपूर्वक खेती की जाए, किंतु खां साहब ने कहा कि इतने आडंबर की जरूरत नहीं, बिगार में बड़ी सुगमता से सीर हो सकती है, सीर के लिए बिगार जमींदार का हक है, उसे क्यों छोड़िए। लेकिन इस सुव्यवस्थ रूपी मधुर गान में एक कटु स्वर भी था जिससे उसका लालित्य भंग हो जाता था। यह विद्यावती का असहयोग था जिसे अपने पति की स्वार्थपरता एक आंख न भाती थी। कभी कभी वह मतभेद विवाद और कला का विरूप धारण कर लेता था। फागुन का महीना था, लाला प्रभा शंकर धूमधाम से होली मनाया करते थे, अपने घरवालों के लिए नए कपड़े लाए तो ज्ञान शंकर के परिवार के लिए भी लेते आए थे। लगभग 50 वर्षों से वह घर भर के लिए नए वस्त्र लाने के आदि हो गए थे। अब अलग हो जाने पर भी वह उस प्रथा को निभाते रहना चाहते थे। ऐसे आनंद के अवसर पर द्वेष भाव जागृत रखना उनके लिए अत्यंत दुखकर था। विद्या ने वह कपड़े तो रख लिए, पर इसके बदले में प्रभा शंकर के लड़के लड़कियों और बहू के लिए एक एक जोड़े धोती की व्यवस्था की। ज्ञान शंकर ने प्रस्ताव सुना तो चुड़कर बोले, यदि यही करना है तो उनके कपड़े लौटा क्यों नहीं देती। विद्या, भला कपड़े लौटा देंगे तो वह उनके मन में क्या कहेंगे, वह बेचारे तो तुमसे मिलने को दौड़ते हैं और तुम भागे भागे फिरते हो, तुम्हें रुपयों का ही ख्याल है ना, तुम कुछ मत देना, मैं अपने पास से दूंगी। ज्ञान, जब तुम धन्ना सेठों की तरह बात करने लगती हो तो बदन में आग से लग जाती है, उन्होंने कपड़े भेजे तो कोई एहसान नहीं किया, दुकानों का साल भर का किराया पेच के लेकर हड़प चुके हैं, यह चाल इसलिए चल रहे हैं कि मैं मुंह भी न खोल सकूं और बड़प्पन भी बना रहे। अपनी गांठ से करते हो तो मालूम होता। विद्या, तुम दूसरों की कीर्ति को कभी कभी ऐसा मिटाने लगते हो जिससे तुम्हें तुम्हारी अनुदारता पर दुख होता है। उन्होंने अपना समझ कर उपहार दिया तो मैं इसमें भी इसकी चाल सूझ गई। ज्ञान, मुझे भी घर बैठे सुखभोग की सामग्रियाँ मिलती तो मैं तुमसे अधिक उदार बन जाता। तुम्हें मालूम है कि मैं आजकल कितनी मुश्किल से गृहस्थी का प्रबंध कर रहा हूँ। लखनपुर से जो कुछ थोड़ा बहुत मिला उसी से गुजर हो रहा है। किफायत से न चलता तो अब तक सैकड़ों का कर्ज हो गया होता। केवल अदालत के लिए सैकड़ों रुपये की जरूरत होती है। बेदखली और इजाफे की कागज पत्र तैयार हैं पर मुकदमे दायर करने के लिए हाथ में कुछ भी नहीं। उधर गांव वाले भी बिगड़े हुए हैं। ज्वाला सिंह ने अब की दौरे में उन्हें ऐसा सिर चढ़ा दिया कि मुझे कुछ समझते ही नहीं। मैं तो इन चिंताओं से मरा जाता हूँ कि तुम्हें एक न एक खुराफात सुझा करती हूँ। विद्या, मैं तुमसे रुपये तो नहीं मांगती। ज्ञान, मैं अपने और तुम्हारे रुपये में कोई भेद नहीं समझता। हाँ, जब राय साहब तुम्हारे नाम कोई जायदाद लिख देंगे तो समझने लगूंगा। विद्या, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहती। ज्ञान, माना, लेकिन वहाँ से भी तुम रोकड़ नहीं लाती हो। साल में 150 रुपये मिल जाते होंगे, इतने पर भी तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते। छिछली ताल की तरह उबलने लगती हो। विद्या, तो क्या चाहते हो कि वह तुम्हें अपना घर उठाकर दे दे? ज्ञान, और बेचारे आप तो आधा लें, मुझे क्या देंगे? मैं तो ऐसे आदमी को पशु से भी गया गुजरा समझता हूँ जो आप तो लाखों उड़ाए और अपने निकटतम संबंधियों की बात भी न पूछे। वह तो अगर मर भी जाए तो मेरी आंखों में आंसू ना आवे। विद्या, तुम्हारी आत्मा इतनी संकुचित है मुझे आज मालूम हुआ। ज्ञान, ईश्वर का धन्यवाद दो कि मुझसे विवाह हो गया, नहीं तो कोई बात भी न पूछता। लाला बरसों तक दही दही हाँक लगाते रहे पर कोई सेंध भी न पूछता था। विद्यावती इस मर्माघात को न सकते कि क्रोध के मारे उसका चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर वहां से चली जाने को उठी कि इतने में महरी ने एक तार का लिफाफा ज्ञान शंकर के हाथ में रख दिया। लिखा था, पुत्र का सर्ववास स्वर्गवास हो गया, जल्द आओ। ज्ञान शंकर ने तार का कागज जमीन में फेंक दिया और लंबी सांस खींच कर बोले, हाँ शोक परमात्मा, यह तुमने क्या किया? विद्या छिटक गई। ज्ञान शंकर ने विद्या से कहा, विद्या, हम लोगों का वज्र गिर पड़ा हमारा। विद्या ने कातर नेत्रों से कहा, मेरे घर पर तो कुशल है? ज्ञान शंकर, हाँ प्रिय, किस मुँह से कहूँ कि सब कुशल है। वह घर उजड़ गया, उस घर का दीपक बुझ गया। बाबू रामानंद अभी संसार में नहीं है। हाँ ईश्वर। विद्या के मुंह से सहसा एक चीख निकल गई। विवल होकर भूमि पर गिर पड़ी और छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। श्रद्धा दौड़ी हुई आई, महरियाँ जमा हो गई। बड़ी बहू ने रोना सुना तो अपनी बहू और पुत्रियों को साथ आ पहुंची। कमरे में स्त्रियों की भीड़ लग गई। माया शंकर माता को रोते देख कर चिल्लाने लगा। सभी स्त्रियों के मुख पर शोक की आभा थी और नेत्रों में करुणा का जल। वो ईश्वर को कोसती थी, कोई समय की निंदा करती थी। अकाल में तो कदाचित हमारी दृष्टि में ईश्वर का सबसे बड़ा अन्याय है। यह विपत्ति हमारी श्रद्धा और भक्ति का नाश कर देती है, हमें ईश्वर द्रोही बना देती है। संसार में हम नित्य घोर से घोर और विषम से विषम अन्याय देखा करते हैं, हमें उनकी सहन पड़ जाती है, लेकिन हमारी अन्याय पीड़ित आँखें भी यह दारुण दृश्य सहन नहीं कर सकती। अकाल मृत्यु हमारे हृदय पट पर से सबसे कठोर दैवीय आघात है, यह हमारे न्याय ज्ञान पर सबसे भयंकर बलात्कार है। पर हाँ, स्वार्थ संग्राम या निर्दय ब्रज प्रहार ज्ञान शंकर को सुखद पुष्प वर्षा के तुल्य जान पड़ा। उन्हें क्षणिक शोक अवश्य हुआ किंतु तुरंत हृदय में नई नई आकांक्षाएं तरंगे मारने लगी। अब तक उनका जीवन लक्ष्यहीन था, अब उसमें एक महान लक्ष्य का विकास हुआ। विपुल संपत्ति का मार्ग निश्चित हो गया था। ऊसर भूमि में हरियाली लहरने मारने लगी थी। राय कमलानंद की अब और कोई पुत्र न था, दो पुत्रियों में एक विधवा और निसंतान थी। विद्या को ही ईश्वर ने संतान दी थी और माया शंकर अब राय साहब का वारिस था। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञान शंकर को यह शोक में व्यापार अपने सौभाग्य की ईश्वरकृत व्यवस्था जान पड़ती थी। वह माया शंकर को गोद में लेकर नीचे दीवान खाने में चले आए और विरासत के संबंध में स्मृतियों स्मृतिकारों की व्यवस्था का अवलोकन करने लगे। वह अपनी आशाओं की पुष्टि और शंकाओं का समाधान करना चाहते थे। कुछ दिनों तक कानून पढ़ा था, कानूनी किताबों का उनके पास अच्छा संग्रह था। पहले मनुस्मृति खोली, संतोष न हुआ। मिताक्षरा का विधान देखा, शंका और भी बढ़ी। याज्ञवल्क ने भी विषय का कुछ संतोषप्रद स्पष्टीकरण न किया। किसी वकील की सम्मति आवश्यक जान पड़ी। वह इतने उतावले हो रहे थे कि तत्काल कपड़े पहनकर चलने को तैयार हो गए। कहार से कहा, माया को ले जा, बाजार के सर करा ला। कमरे से बाहर निकले ही थे कि याद आया, तार का जवाब नहीं दिया। फिर कमरे में गए, संवेदना का तार लिखा। इतने में लाला प्रभा शंकर उदया शंकर आ गए। ज्ञान शंकर को इस समय उनका आना जहर सा लगा। प्रभा शंकर बोले, मैंने तो अभी सुना, सन्नाटे में आ गए। बेचारे राय साहब को बुढ़ापे में यह बुरा धक्का लगा, घर ही वीरान हो गया। ज्ञान शंकर, ईश्वर की लीला विचित्र है। प्रभा शंकर, अभी उम्र ही क्या थी, बिल्कुल लड़का था। तुम्हारे विवाह में देखा था, चेहरे से तेज बरसता था, ऐसा प्रतापी लड़का मैंने नहीं देखा। ज्ञान शंकर, इसी से तो ईश्वर के न्याय विधान पर मुझे विश्वास उठ जाता है। दया शंकर, आपके बड़ी साली के दो लड़का तो नहीं है ना? ज्ञान शंकर ने विरक्त से कहा, नहीं। दया शंकर, तब तो चाहे माया ही बारिश हो। माया, ज्ञान शंकर ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, कैसी बात करते हो, यहाँ कौन सी बात, कहाँ कौन सी बात, कैसी बातों का समय नहीं है। दया शंकर लज्जित हो गए। ज्ञान शंकर का विलंब असह्य होने लगा। पैर गाड़ी उठाई और दोनों आदमियों को बरामदे में छोड़कर डॉक्टर इरफान अली के बंगले की ओर चल दिए, जो नामी बैरिस्टर थे। बैरिस्टर साहब का बंगला खूब सजा हुआ था। शाम हो गई थी, वह हवा खाने जा रहे थे। मोटर तैयार थी, लेकिन वो वकीलों से जान न छूटती थी। वही समय अपने ऑफिस में आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे थे और अपने छोटे टेरियर की गोद में लिए हुए उसके सिर में थपकियाँ देते जाते थे। मुवक्किल लोग दूसरे कमरे में बैठे थे। वह बारी बारी से डॉक्टर साहब के पास आकर वृत्तांत कहते जाते थे। ज्ञान शंकर को बैठे बैठे 8 बज गए। तब जाकर उनकी बारी आई। उन्होंने ऑफिस में जाकर अपना मामला सुनाना शुरू किया। क्लर्क ने उनकी बातें सब बातें नोट कर ली। इसकी फीस 5 रुपये हुई। डॉक्टर साहब की सम्मति के लिए दूसरे दिन बुलाया। उसकी फीस 500 थी। यदि इस सम्मति पर कुछ शंकाएं हों तो उसके समाधान के लिए प्रति घंटा 200 देने पड़ेंगे। ज्ञान शंकर को मालूम न था कि डॉक्टर साहब के समय का मूल्य इतना अधिक है। मन में पछताया कि ना किस झमेले में फंसा। क्लर्क की फीस तो उसी दिन दे दी और घर से रुपया लाने का बहाना करके वहाँ से निकल आए। लेकिन रास्ते में सोचने लगे, इनकी राय जरूर पक्की होती होगी, तभी तो इतना मूल्य है, नहीं तो इतने आदमी इन्हें घेरे क्यों रहते। कदाचित इसलिए कल बुलाया है, खूब छान पड़ताल करके तब राय देंगे। अटकल पच्चू बातें कहनी होती तो अभी ना कह देते। अंग्रेजी नीति में यही तो गुण है कि दाम चौकस लेते हैं पर माल खरा देते हैं। सैकड़ों नजीरें देखनी पड़ेंगी, हिंदू शास्त्रों का मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर तत्व हाथ आएगा। रुपये का कोई प्रबंध करना चाहिए, उसका मुंह देखने से काम न चलेगा। एक बात निश्चित रूप से तो मालूम हो जाएगी, यही ना कि मैं तो धोखे में निश्चिंत बैठा हूँ और वहाँ दाल निकले, सारी आशाएं नष्ट हो जाए। मगर यह व्यवसाय है उत्तम, आदमी चाहे तो सोने की दीवार खड़ी कर दे। मुझे शामत सवार होती कि इसे छोड़ बैठा, नहीं तो आज क्या मेरी आमदनी 2-4 हज़ार मासिक से कम होती। और फिर ये काठ को लू तक हज़ारों पर हाथ साफ करते हैं तो क्या मेरी भी न चलती। इस जमींदार का बुरा हो, इसने मुझे कहीं का ना रखा। वह घर पहुंचे तो 9 बज चुके थे। विद्या अपने कमरे में अकेले उदास पड़ी थी। महरियाँ काम धंधे में लगी हुई थी और पड़ोसने विदा हो गई थी। ज्ञान शंकर ने विद्या का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और गदगद स्वर से बोले, मुँह देखना भी न बता था। विद्या ने रोते हुए कहा। उनकी एक सूरत एक क्षण के लिए आंखों में नहीं उतरती, ऐसा जान पड़ता है वह मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ज्ञान, मेरा तो सांसारिक वस्तुओं पर भरोसा ही नहीं रहा, यही जी चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चल दूँ। विद्या, कल शाम की गाड़ी से चलो, कुछ रुपये लेते चलने होंगे। मैं उनके षोड़शे में कुछ दान करना चाहती हूँ। ज्ञान, हाँ हाँ ज़रूर, अब उनकी आत्मा को संतुष्ट करने का हमारे पास यही तो एक साधन रह गया है। विद्या, उन्हें घोड़े की सवारी का बड़ा शौक था, मैं एक घोड़ा उनके नाम पर देना चाहती हूँ। ज्ञान, बहुत अच्छी बात है, तो 250 में घोड़ा मिल जाएगा। विद्यावती ने डरते डरते प्रस्ताव किया था। ज्ञान शंकर ने उसे सहर्ष स्वीकार करके उसे मुक्त कर दिया। ज्ञान शंकर इस अपव्य को इस समय काटना अनुचित समझते थे। यह अवसर ही ऐसा था, अब तक विद्या का निरादर तथा अवहेलना न कर सकते थे।